तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है तैषी शुद्धात्म में निरत नित्य तो उपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज हम लोग पिछले कई दिनों से इस बात का निरंतर विचार भी कर रहे हैं और पुरुषार्थ भी कर रहे हैं कि शेष हमारा जो जीवन रहा है उसे हम कैसे व्यवस्थित करें जिससे कि हमारा मनुष्य होना सार्थक हो, हमारा जीवन अच्छा बने। जरूरी है इसके लिए कि हम अपने जीवन की दुर्लभता को समझें, उस पर विश्वास करें। और कैसा जीवन अच्छा जीवन कहलाता है इस बात का ज्ञान प्राप्त करें और फिर अपने जीवन को एक दिशा दें। जैसा आचार्य भगवंतों ने हमें श्रद्धा, ज्ञान और आचरण, इन तीनों के सम्मिश्रण से जीवन अच्छा बनता है ये उपदेश दिया है, उसी के अनुसार हम अपने जीवन को अच्छा बनाएं। हमारे भीतर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, ये हमने पिछले दिनों समझा है। हमारे भीतर आत्मज्ञान भी होना चाहिए। भौतिक ज्ञान बहुत हो और आत्मज्ञान ना हो, दुनिया भर की बातों में श्रद्धा हो और आत्मा पर श्रद्धा ना हो। हम बहुत सारी क्रियाएं करें लेकिन जिनसे अपने आत्मा का कल्याण होता हो वे क्रियाएं ना करें तो हमारा जीवन कभी अच्छा नहीं बन सकता। इसलिए जरूरी है कि हमें अपने आत्म कल्याण की रुचि हो, हमें अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान हो और हम उसके अनुरूप अपने आचरण को बनाएं। वास्तव में हमारा आचरण कषायों से रहित है लेकिन क्या करें, हमारे नादिकाल के संस्कारों की वजह से, हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से, हमारे अपने अविश्वास और अश्रद्धा की वजह से हमारी वो जो वास्तविक स्थिति है वो गड़बड़ा गई है और हम संस्कारवश राग द्वेष करते रहते हैं। आचरण या कि संयम या कि चारित्र एक ही काम करता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे अंदर जिम्मेदारी पैदा करता है। हम जितनी लापरवाही से अपना जीवन जीते हैं वो उसको उतना ही अनुशासित करने की तरफ हमारे कदम बढ़ाने के लिए प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को इस तरह लापरवाही से न जिएं, हम अपने जीवन को अनुशासित करें। दूसरे के द्वारा तो अंकुश हमारे ऊपर कई बार लगाया गया है, दूसरे लोगों के द्वारा तो हमें कई बार नियम इत्यादि दे करके भयवश और अनुशासित किया गया है, या कि हमने स्वयं भी प्रेमवश कई बार बहुत सारा अनुशासन स्वीकार किया है लेकिन वो भय से या द्वेष से या कि प्रेम से जो अनुशासन होता है उस अनुशासन से ऊपर भी एक अनुशासन है आत्मानुशासन, जिसमें कि मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने जीवन को अनुशासित करता हूँ। वास्तव में वो अनुशासन चारित्र हमें सिखाता है। इतना ही नहीं, हमारे भीतर एक संकल्प शक्ति है कि हमारे आत्मविश्वास को दृढ़ बनाने का काम भी यही संयम करता है। ये बात हमने पिछले दिनों बहुत अच्छे से समझी थी। आज हमें एक बात और समझ लेनी है कि हमारे भीतर जो संस्कार पड़े हुए हैं, हर व्यक्ति के अंदर यही बात आती है कि जब हम यहाँ बैठते हैं और जब हम ये सारी बातें सुनते हैं, पूजा पाठ करते हैं, धर्म ध्यान और धर्मात्माओं के संपर्क में होते हैं, तब तो हमारा अपना सोच बदल जाता है। लेकिन हम जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तब फिर हम उसी सब में रच पच जाते हैं जिससे कि विमुख होकर के हम यहाँ बड़े उत्साह से आए थे, उसी में हम फिर से रच पच जाते हैं। कहाँ चला जाता है वो उत्साह और कहाँ चली जाती है वो हमारी सारी संगति का जो हमारे ऊपर प्रभाव था, वो सब कहाँ गायब हो जाता है? इसका एक ही कारण है, हमारे अपने मिथ्या संस्कारों की प्रबलता। इतने प्रबल हैं हमारे काषायिक संस्कार, राग द्वेष के संस्कार, कि क्षण भर को राग द्वेष से विमुख होते हैं और फिर ज्यों के त्यों राग द्वेष में पड़ जाते हैं। जैसे कि शावक के द्वारा या गृहस्थ के द्वारा किया गया तप महागुणकारी नहीं होता, क्योंकि वह गज स्नान के समान है या मथानी से मथने के समान है। गज या हाथी जैसे नदी के किनारे जाकर के और ढेर सारा पानी अपने ऊपर डाल लेता है और बड़ा साफ सुथरा हो जाता है, लेकिन अगले क्षण फिर ढेर सारी धूल भी डाल लेता है और कीचड़ से लिप्त हो जाता है। घंटे भर पूजा पाठ धर्म ध्यान में बिताने के बाद 23 घंटे तो सिर्फ राग द्वेष में ही गुजरते हैं, और वो जो घंटे भर के लिए हमारे राग द्वेष में कमी आती है वो उतनी महाउपकारी नहीं हो पाती है। थोड़ी देर को लगता तो है, हंस के समान श्रोता होना बहुत कठिन है, गाय के समान श्रोता होना बहुत कठिन है। हम तो माटी के समान श्रोता हैं, उत्तम मध्यम जगन्य तीन श्रोताओं में सबसे श्रेष्ठ हंस के समान है, जो नीर शीर विवेक करके जानते हैं कि जो कहा गया है जीवन के कल्याण के लिए उपदेश किया गया है उसमें से सारभूत क्या है उसे अपने जीवन में उतार लेते हैं और तृप्त हो जाते हैं। हम वैसे नहीं हैं, हम तुरंत कहाँ उतार पाते हैं कि इधर उपदेश हुआ नहीं और उधर हमारे भीतर वैराग्य ने हिलोर मारी, हमारे ज्ञान ने हिलोर मारी और हमने सब राग द्वेष एक किनारे धर करके और अपने को मुक्त करके जंगल में चले गए और ध्यान में लीन होकर के तब उठे जब केवल ज्ञान हो गया। वो चौथे काल के उतने योग संस्कारवान आज हम नहीं हैं। हमारे संस्कार जितने कषाय के हैं उतने कषायों को तोड़ने के संस्कार नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमारा अभ्यास ही नहीं है। हम थोड़ी देर अभ्यास करते हैं, फिर बाद में अभ्यास तो हम उन्हीं चीजों का करते हैं जिससे कि हमें राग द्वेष, हमें उसी में संतोष जान पड़ता है। तब फिर दूसरे प्रकार के श्रोता भी हम नहीं हैं कि रूखा सूखा खा करके जैसे मीठा मीठा दूध देती है गाय, हम भी जो है रूखा सूखा खा करके और अपने जीवन में उसको पचा करके और अपने लिए रस नहीं निकाल पाते हैं। हम तो तीसरे प्रकार के श्रोता हैं कि माटी पर जैसे पानी गिरता है तो सौंधी सौंधी गंध आने लगती है, भीग जाती है माटी, फिर जरा हवा चली धूप निकली तो फिर सूख जाती है। हमारे ऊपर भी जब तक धर्म ध्यान में हमारा मन लगता है, हमें भगवान जिनेंद्र के कहे हुए वचनों को सुनने का सौभाग्य मिलता है तो हमारा मन भीग जाता है और फिर संसार की जरा हवा लगती है तो फिर उसके बाद ज्यों का त्यों, फिर चाहिए उस पर फिर से सिंचन चाहिए, फिर सिंचन किया फिर बाहर निकले फिर ज्यों के त्यों। हम आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि रोज रोज सुनते हैं फिर भी हमारे मन में कुछ भी नहीं आता, लेकिन उतनी देर तो ऐसा लगता है जैसे कि हम सब कुछ कर लेंगे, पर बाहर निकल के लगता कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारे बस का नहीं है, हम कैसे करेंगे इस संसार में, इस गृहस्थी में रह के हमसे कैसे संभव है, कहा होगा महाराज ने भैया हमारे बस का नहीं है, लिखा होगा जिन वाणी में हमारे हमसे नहीं होता, क्या है आखिर हमारे अंदर? वो हमारे अपने संस्कारों की प्रबलता। आज अपन इस बात को बहुत गौर से समझ लें कि राग द्वेष के संस्कार हमारे इतने प्रबल हैं और हमें राग द्वेष के निमित्त भी इतने अधिक मिलते हैं कि हम चाह कर भी अपने संस्कारों को नहीं तोड़ पाते हैं। अगर हम थोड़ा सा अपने जीवन में व्रत नियम और संकल्प लेना शुरू कर दें तो हमारे राग द्वेष के संस्कारों में ढीलापन तो आने ही लगे। बस इतना हमें थोड़ा सा काम करना चाहिए, जैसा बने तैसा। ये आत्मविश्वास और आत्मबल के बिना नहीं हो सकता। संकल्प लेना आत्मबल का प्रतीक है। जो ये कहते हैं कि मैं सौगंध क्यों लूं, किस बात के लिए नियम लूं, मैं तो करता ही नहीं हूं, उन्हें पहचानना चाहिए, अपने भीतर झांक के देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे भीतर का कच्चापन मुझे ऐसा करने की प्रेरणा दे रहा हो। हमारे भीतर का कहीं आत्मबल हम कम तो नहीं है जो कि मैं संकल्प लेने से भयभीत होता हूं कि क्या पता मैं निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। भैया मुझे मालूम है कि नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन अगर मैं संकल्प ले लूंगा तो जैसे बनेगा तैसे, बेमन से ही सही, पर मुझे करना है, ऐसी भावना मेरे भीतर जागृत हो जाएगी। नहीं तो कभी नहीं होगी। कौन सा बेटा होगा जो कि सबसे पहले स्कूल जाने को तैयार होता होगा हम और आप में से, पर जबरदस्ती माँ पिता जो है दुनिया भर का लालच दे करके, थोड़ी धमकी दे करके और थोड़ा प्यार करके और भेज देते हैं तो थोड़ा चार बातें सीख जाता है ज्ञान की, फिर तो अपने आप ही इंटरेस्ट आने लगता है, फिर तो भाग भाग करके स्कूल जाता है, शुरू में कौन जाता है। ठीक ऐसा ही इस मन का भी हिसाब है। वो नहीं तोड़ना चाहता अपना राग द्वेष का संस्कार, क्योंकि अनादि काल से उसी में तो लगा हुआ है, उसी में उसको आनंद आता है। सो उसके कुटेव को कहते, ये मन की कुटेव है, मन सब जानता है फिर भी जो है उसी दिशा में जाता है। पे स्वान सा मन सदा मल सोध लाता। जैसे कुत्ते को कितना भी मीठा और कितनी भी बढ़िया चीज खिला दी जावे, लेकिन आंख आपकी चूकी और वो नाली में जाकर के और विष्ठा ही खाएगा, गंदगी ही खाएगा। ऐसे ही मन का है कि श्रुत के स्कंद पर दिन भर स्वाध्याय करा दो, उसको दिन भर धर्मोपदेश में लगा दो, पूजा पाठ में लगा दो। पे स्वान सा मन सदा मल सोध लाता, लेकिन मेरा मन इस तरह से है स्वान के समान, उस कुत्ते के समान, जो कि अवसर पाते ही और पुनः उसी राग द्वेष की गंदगी की तरफ भागता है। क्या करें, हमने खुद अपने हाथ से ऐसा उसकी चाल बना रखी, उसकी आदत हमने डाल रखी है। हैबिट इज द सेकंड नेचर। इसीलिए लिखा हुआ है कि आदत मत डालना, आदत फिर एक दूसरा स्वभाव बन जाता है। अपना स्वभाव हम भूल जाते हैं उस आदत के चलते, अपनी वास्तविकता हम भूल जाते हैं उस संस्कार के चलते। आज हमें यही पुरुषार्थ करना है, अपने राग द्वेष के निमित्तों को कम करें और राग द्वेष के निमित्त के बीच रह करके भी हम संकल्पित हों कि मैं ऐसे अवसर आने पर भी यह नहीं होने दूंगा। बस दो ही चीजें हमारे हाथ में हैं भैया। राग द्वेष के निमित्त कौन से हैं? संसार के पांच इंद्री के विषय हैं और मन के विषय हैं, यही तो राग द्वेष के निमित्त हैं। सो उनकी लिमिट कर लो। वर्णी जी हमेशा कहा करते थे कि व्रत नियम जब भी लेना शुरू करो तो सबसे पहले एक व्रत ले लेना, परिग्रह का परिमाण कर लेना, तो सारे पापों से बच जाओ। पांच पापों में से अगर सब प्रकार से बचना चाहते हो तो संतोषी जितना होगा उतनी कषाय मंद होगी, उतने कमती पाप होंगे, उतने राग द्वेष के अवसर कम आवेंगे। जिसका लिमिट है कि मैं अपने पास इतनी ही सामग्री रखूंगा, क्योंकि इस सामग्री के माध्यम से मेरे अंदर आसक्ति और द्वेष दोनों ही बढ़ते हैं। अहंकार और संक्लेश दोनों का कारण मेरे अंदर अगर है तो मेरी अपनी ये जो एक अनलिमिटेड, जो मैंने बिना किसी सीमा के परिग्रह को रख रखा है, अपनी आसक्ति को निरंतर बढ़ाता रहता हूं, वो मेरे पापों का सबसे बड़ा स्रोत है। ऐसा विचार करके सबसे पहले अपनी इच्छाओं का, इसीलिए समंतभद्र स्वामी के चरणों में बैठो तो वे कहते हैं कि परिग्रह परिमाण को ऐसा समझो कि अपनी इच्छाओं को सीमित कर लो। मुझे मेरे पास करोड़ रुपए की संपत्ति है, जब चार करोड़ हो जाएंगे तो उससे ज्यादा नहीं चाहिए। चलो कम से कम एक सीमा तो बनी, चार करोड़ के बाद मेरा कुछ भी नहीं है, जबकि अभी है नहीं या कुछ भी, पर एक सीमा तो बनी। नहीं तो अनंत है विस्तार पांच इंद्री के विषय और मन के विषयों का। उसमें हम सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं करेंगे। तो संस्कार तोड़ने का एक तरीका है कि हम अपने अपनी इच्छाओं पर, अपने पांच इंद्रियों और मन के विषयों पर अंकुश रख ले, उनकी लिमिट कर ले, रोज रोज के लिए कर ले। मैं कहां कह रहा हूं कि जीवन भर के लिए कर ले, एक घंटे के लिए कर ले। जब मैं यहां इस एमबी जैन के अंदर आया हूं और इस हॉल के भीतर हूं, तब तक मेरा एक घंटे के लिए चारों प्रकार के आहार का त्याग है। देखें कैसे नहीं सटता है, कौन यहां भोजन करवा रहा है, मेरा तो त्याग है। और उस समय अगर आयु बंधे मंद परिणामों से तो खोटी नहीं बंधेगी, त्याग के साथ जो आयु बनती देवायु वही बंधेगी। कितना आसानी से हम अपने उन संस्कारों को तोड़ सकते, कोई बहुत कठिन सी चीज नहीं है। संयमित अपने को बनाना, बस एक बार हमें मन में आ जावे कि मेरे को संयमित बनना है, अपने जीवन को अनुशासित बनाना है, अपने राग द्वेष के संस्कारों को घटाना है। घर में भी है तो भैया समझ गए हैं कि फलाने का स्वभाव ऐसा है और चार बातें कहे बिना उनका मन नहीं मानता है, सो अपन भी अपनी आदत बना लो कि सुन लेंगे, हम राग द्वेष नहीं करेंगे। ऐसा हम मंदिर में आए हैं तो वहां पर कई लोगों की आदत होती है कि दुनिया भर की बातें शुरू कर देते हैं, तो हम उनकी बातें सुनेंगे तो, लेकिन रिप्लाई नहीं देंगे, इतना हम नहीं कर सकते। सुन तो सब लेंगे प्रेम से, क्योंकि उनकी आदत है सुनाने की, सब पन्ने सुन ली, दुनिया भर की बातें करते हैं वो यहीं आकर के और खड़े होकर के, सो भैया हम सुन तो लेंगे लेकिन हम जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा संयम है, हमने अपने को संयमित कर लिया है। आसानी से राग द्वेष बढ़ते जान करके वहीं अपने ऊपर अंकुश लगा लेना, इतना हमारे हैबिट में आ जाए, हमें इतना आसान हो जाए। दो स्थितियां होती हैं संयमित होने की, एक तो पाप से बचना मुश्किल होता है और धीरे धीरे अभ्यास ऐसा तगड़ा हो जाता कि फिर पाप करना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अभी जैसे पाप से बचना मुश्किल लग रहा है, अभी जैसे असंयम से बचना मुश्किल लग रहा है, अभी जैसे व्रत नियम को निर्वाह करना मुश्किल लग रहा है, एक स्थिति आएगी ऐसी अगर हमारे भीतर अभ्यास हो जाएगा तो फिर हमसे जो अनावश्यक है वो होगा ही नहीं, हमसे फिर पाप होना मुश्किल हो जाएगा। कोई कहे कि ऐसा कर लो, हमसे हो ही नहीं सकता। कोई कहे कि रात में खा लो, हमसे खा ही नहीं जाएगा, काय को विकार परेशान हो रहे, हमाओं ने कछु नियम आए ने कछु आए, मन हमसे खाओ ही नहीं जी, हमारा तो अब ऐसा स्वभाव ही हो गया, अब हमें वो चीज ध्यान में नहीं आती। अभी तो हमें ऐसा करना पड़ता था कि चार लोगों से कहना पड़ता था कि देखो हम रात में नहीं खाते, भैया हमारे सामने चीजें मत लाना, नहीं तो हमारे मन में इच्छा जागृत हो जाएगी, संस्कार बहुत पुराना है, और हमसे फोर्स मत करना रात में खाने का, नहीं तुम्हारी इच्छा हो जाएगी। अब हम ये कह रहे हैं कि चाहे तुम फोर्स करो, चाहे 56 प्रकार की व्यंजन लान के रख दो, हम खा ही नहीं सकते, हमारे अंदर आए तो ही नहीं, भाव ही नहीं आता। ये स्थिति क्यों नहीं बनती है? इसलिए नहीं बनती क्योंकि हमारा भलाइयों का संस्कार कमजोर है और बुराइयों का संस्कार हमारा बड़ा प्रबल है। उसके चलते हम कितना भी ज्ञानवान हो जाते हैं, कितने भी समझदार, कितने भी अच्छी संगति में बैठ लेते हैं, लेकिन फिर वही हमारा संस्कार जोर मारता है और हम फिसल जाते हैं। तो भैया एक चीज अपन के समझ में आ गई कि लगातार अच्छी संगति में चारित्रवान के पास बैठें, एक बात, जहां राग द्वेष के कम अवसर हों, जहां कषायों की मंदता के अवसर हों, भैया वहां ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करें। और अगर राग द्वेष के संपर्क में भी रहना है, पांच इंद्रिय और मन के विषयों के बीच रहना है, तो वहां भी मेरी कोई लिमिट तो होनी चाहिए कि मैं इतना ही करूंगा बस। तो पहली चीज अपन ने संस्कारों को इस तरह से हम तोड़ सकते हैं, आसानी से तोड़ सकते हैं। भर्तृहरि मुनि महाराज बन गए थे, वैसे जैन धर्म में नहीं पैदा हुए थे, श्रृंगार शतक लिखा, फिर बाद में उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा, और वे ध्यान में लीन थे। और अचानक उन्होंने देखा कि एक घोड़े पर सवार होकर राजकुमार इधर से दौड़ता आ रहा है, वे शांत अपने में उसे देख रहे हैं ज्ञाता दृष्टा बन करके, और क्षण भर में देखा कि इधर से एक राजकुमार दौड़ करके अपने घोड़े पर आ रहा है, और तीसरे बार दोनों से दृष्टि हट करके सामने पहुंची की बात, तो सामने देखा कि एक हीरा चमक रहा है। बहुत सुंदर हीरा। और मन में एक क्षण को विचार आया कि ऐसा हीरा तो जब मैं राजा था तो मेरे पास होना चाहिए था। आ सकता है विचार, मार सकती है कषायें जोर। हां, एक क्षण को आया और अगले क्षण तो वहां का दृश्य ही बदल गया। दोनों राजकुमार दोनों तरफ से घोड़ों पर सवार थे, दोनों के हाथ में तलवारें निकल आईं और आवाज आने लगी। वो अपने ध्यान में लीन हो गए कि देखें क्या घटित होता है। और अगले क्षण ये घटित हुआ कि दोनों ने अपने प्राण दे दिए। मुस्कुरा उठे भर्तृहरि। किस बात से मुस्कुराए कि अगर ऐसे ही इन दोनों के पहले मेरे मन में जो बात आई थी और मैंने उसको अगर कर लिया होता, हीरे की तरफ हाथ बढ़ाया होता, तो मेरी भी यही दुर्गति होती। उतने से हीरे के पीछे कि मैं उठाऊंगा, वो कहता है कि मैं उठाऊंगा और दोनों ने प्राण दे दिए, जबकि मेरी दृष्टि पहले गई थी और मैं चाहता तो मैं उठा लेता, पर मेरे अपने संयम ने मुझे बचा लिया। ये है हमारे अपने जीवन का प्रतीकात्मक, बना लीजिएगा इसको। हमारी दृष्टि जाती है चीजों पर और हमारे मन में लोलुपता जागृत होती है और हमें लगता है कि इन सब चीजों को हम अपने पोजेशन में ले लेवे। और यहां से फिर हमारे भीतर एक विचार शुरू होता है और वो विचार कहां तक ले जाएगा, हिंसा तक में ले जाएगा। झूठ चोरी कुशील सब हमसे करवा लेगा। एकमात्र हमारे भीतर अगर किसी चीज के प्रति, पंचेंद्री के विषयों के प्रति आसक्ति जागृत हो गई, हमारे संस्कार के चलते अगर हमारी लिमिट नहीं है, तो और अगर हमारी लिमिट है तो हमने तो ये चीज त्याग दी है, अब उसकी कोई आवश्यकता नहीं। त्यागी हुई चीज के प्रति बहुत कम अवसरों पर आसक्ति आती है। बहुत तीव्र संस्कार होगा तो क्षण भर को मन में आएगी, पर वाणी और शरीर से ना करें, अंकुश रख लें तो बच भी सकते हैं। तो पहले नंबर अपने को अपने संस्कार तोड़ने के लिए ऐसा पुरुषार्थ जागृत करना चाहिए, छोटे छोटे से, दिन भर के लिए, घंटे भर के लिए, दो घंटे के लिए, आज दिन के लिए, आज रात के लिए, कोई ना कोई मेरा नियम है। मैं अपने जीवन को अब ऐसे ही नहीं बिताऊंगा, मुझे अब अपने जीवन को नियमित बनाना। और दूसरी बात, मुझे मिले हैं इंद्रिय और मन, पांच इंद्रियां हैं और मन है, मुझे अपने इंद्रियों और मन को संतुलित भी करना है और इनका सदुपयोग भी करना है। ये तो पांच इंद्रिय के जो विषय थे उनको तो मैंने लिमिटेड कर लिया है, तो उनके माध्यम से मेरे भीतर जो राग द्वेष के परिणाम उठते थे अब उनमें थोड़ी कमी आ गई है, लेकिन मेरा मन तो अभी भी उन सब के लिए करता तो है। चीजें ना भी हो तब भी मन तो दौड़ जाता है चीजों की तरफ। कितनी सी चीजें देख पाते अपन इन आंखों से, लेकिन जो आज चीजें तो बहुत अपार है। उस पांच इंद्रिय और मन का क्या करना, सदुपयोग करना, उसको कहीं ना कहीं भली चीज में एंगेज करे रखना, ताकि बुरे की तरफ जाने का उसको मौका ही ना मिले। क्या ऐसा नहीं कर सकते हम? वो बार बार जाएगा बुरे की तरफ और हम डाइवर्ट करके उससे कहीं जो हमने अपना लक्ष्य बना रखा है उसको हम। इसीलिए शायद पुराने लोग सुबह उठते थे तो भगवान की जय, किसी से मिले तो जय जिनेंद्र, गद्दी पे पहुंचे जय जिनेंद्र, तिजोरी को जय जिनेंद्र कर रहे हैं, जिससे मिले उससे जय जिनेंद्र, पूरे दिन भर सोने जाने लगे तो सोने जाते समय भी जय जिनेंद्र, दिन भर एक लिंक बनी। जिनेंद्र भगवान हमेशा मेरे लक्ष्य में हैं, मेरी कषायों को ब्रेक कर देते हैं वो। अगर कषाय आती भी है, भैया लिखा है कि अगर कोई आपस में बड़ा झगड़ा कर रहा हो, किसी की तू तू मैं हो रही हो और उससे करो जय जिनेंद्र, तो एक क्षण को तो वो जय जिनेंद्र थोड़ा सा, फिर भले ही लड़े लेकिन उतनी तेजी से नहीं लड़ पाए। शाम को अगर दोन संधि काल है और बिजली जल जावे तो हाथ जुड़ जाते कई लोगों के, और लड़ाई हो रही थी और उतने में कोई आके बिजली जला देवे तो दो जनों के हाथ जुड़ जाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे उतनी तेजी से। ये क्या चीज है? ये संस्कारों को तोड़ने का ढंग है बस, और कुछ नहीं। हम इस तरह के अपने जीवन में कुछ थोड़े थोड़े से नुक्से अपना ले, अपने लिए और दूसरे के लिए। देखो भैया, दूसरे को सौंप दो अपनी कषायें, वो मंद करे अगर हमसे नहीं हो तो, और हम दूसरे की जिम्मेदारी ले लेंगे कि तुम्हें जब गुस्सा आए सो हम कैसे उन्हें कैसे उसको ठंडा कर देंगे, और हमें आवे कषाय तो तुम ठंडा कर देना। आग में ईंधन डालते हैं हम पानी की जगह पर, दूसरे को थोड़ी आई अपन ने और ईंधन डाल दो, सुबह तो लग नहीं है, आग ही तो है। सो अपनी एक दूसरे की कषायें हम संभालें, एक दूसरे के कषाय में निमित्त न बने, उसको बढ़ाने में निमित्त न बने, निमित्त बने तो उनको मंद करने में निमित्त बने, तो शायद हो सकता है कि हम इस तरह अपने पांचों इंद्रिय और मन का सदुपयोग कर सकते हैं। कोई हमसे बुरी बात कहता है तो हम फौरन कह देंगे कि भैया इसका अवसर तो बाद में भी आ जाएगा, अभी तो दूसरा अवसर है, जरा अच्छी बात कर ले, वो अपन कल कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत। या कि अपन ही करने लगे तो दूसरा अपन को टोक दे कि नहीं भैया अभी तो दूसरी अच्छी चर्चा करो, अभी फिर बाद में कर लेंगे, वो बात बाद में कर लेंगे। मानो आ भी गया है मन में उस बात को करने का 2-5 मिनट, ऐसा ना हो कि वो फैलती चली जाए। और फिर क्या होता है कि जब अपन एक बार कषाय में पड़ जाते हैं तो उदीर्ण होना शुरू होती है और फिर धीरे धीरे और बढ़ती चली जाती है। उस उदीर्णा को ना होने दें, कषाय का उदय आने पर राग देश से हमारा जैसे ही चित्त मलिन होने लगे, उस समय हम ध्यान रखें कि मुझे अपने मन वचन काय का सदुपयोग करना है। जैसे ही मन उस तरफ जाए किसी दूसरी जगह एंगेज कर लें अपन उसको, बड़ी आसानी से ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा सा विचार करें अगर तो। और संतुलन, मन और वाणी का और शरीर का क्या संतुलन है भैया? सब चीजों पर लगा लो, क्या करना, कैसे करना, कब करना, क्यों करना, क्या खाना, कैसे खाना, कब खाना, क्यों खाना, सब चीजें, पहनना, ओढ़ना, जो जितनी क्रियाएं हैं उन सब पर चार चीजों का अंकुश बिठा दो। कब करना? जब चाहे तब, पशु की तरह 24 घंटे खाना? अरे नहीं भाई, मैं तो मनुष्य हूं, मैं पशु तो हूं नहीं, मैं तो 12 घंटे ही खाऊंगा, सूरज की रोशनी आएगी और मेरे चौके का दरवाजा खोलेगी और जाते समय मेरे चौके का दरवाजा बंद कर जाएगी, बस जय जिनेंद्र हो गया मेरा काम, इतने से ही मेरा काम चलेगा। तो कब और कैसे? खड़े खड़े, चाहे जैसे, जूते मोजे पहन करके? अरे नहीं नहीं, बहुत शुद्धि के साथ हाथ पैर धो करके, भगवान का स्मरण करके, क्योंकि जो भी खा रहा हूं वो खाने के लिए नहीं खा रहा हूं, अपने जीवन की निर्मलता के लिए खा रहा हूं। क्यों का प्रश्न मेरे भीतर है कि खाने का मेरा उद्देश्य क्या है, और क्या खाना जिससे मन मलिन ना हो, जिससे मेरे अंदर इंद्रियों में उद्रेक ना आवे वो खाना, जिससे मेरा मन राग द्वेष में ज्यादा ना जावे, बस इतना ही संतुलन है। क्या खाना? वो सब चीजें जो कि जिनसे जीवों की हिंसा होती, इसी को तो अपन अभक्ष कहते हैं और क्या कहते हैं, जिससे हमारे जीवन में मलिनता आती है। एक बाबा जी के पास चला गया था एक युवक की, आप बड़ी चर्चा करते हैं मलिनता और पवित्रता की, बताओ तो हमें तो समझ में नहीं आती ये चीज। तो उन्होंने कहा हम अभी बताए देते हैं। उन बाबा जी के पास में जो है कोई पूड़ियां रख के चला गया था, कोई सेठ बेठ होगा तो वो पूड़ियां रख के चला गया, गरीब आदमी जो है रोटी रख के चला गया था, वैसे वाले बाबा जी मान लो अपन, हमारे जैसे बाबा जी नहीं, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाए। आप सोचो कि महाराज के पास पूड़ी रख के चले गए, वैसे वाले बाबा जी हैं मान लो, तो उनके पास पूड़ी रख गए और कोई वो रख गया। अब युवक को जो है कैसे समझ में आए, तो उनने कहा देखो इसमें से कौन सा मन को गंदा करेगा। उन्होंने कहा ऐसे कैसे, कैसे कह सकते हैं कि पूरी मन को गंदा करेगी और रोटी भला करेगी। उन्होंने कहा प्रयोग कर लो, उठाओ दर्पण, उठाओ आईना मिरर, तो उठाया दर्पण और उस पर कहा कि रगड़ो पूरी, तो पूरी जैसे रगड़ी से थोड़ा बहुत तो दर्पण में दिखता था, वो और धुंधला हो गया।
फिर कहने लगे अब रगड़ो रोटी, रोटी रगड़ी सो फिर ज्यों कहते हूं बढ़िया देखने लगा कि लबस ऐसे इसी से लगा लो कि जिस जो जो दर्पण को भी धुंधला कर दे तो मन को नहीं करेगा क्या धुंधला। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरी मन को धुंधला करती, मेरे मैं कहने का आशय है कि भोजन भी ऐसा जो कि मेरे मन को मलिन करे, मेरे चित्त में विकार उत्पन्न कर दे, ऐसा बहुत सा भोजन है अपन सब जानते हैं, नहीं जानते खराब चीज को नहीं जानता है, मुझे कहना पड़ेगा क्या जैन धर्म के मंच से मद मधु मांस की चर्चा करनी पड़े तो उसके सोचना चाहिए कि अब तो दिन लग गए इसका मतलब, अब तो पंचम काल बिल्कुल आ ही गया, सप्त व्यसन के त्याग की चर्चा और यहां से करनी पड़े, ये तो स्वाभाविक है, इस गेट के भीतर घुसेंगे तभी हो गया था, वो तो यहां कहने की आवश्यकता नहीं, होना तो ये चाहिए था। चलिए फिर भी नहीं है अगर तो हम अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करें कि जो चीजें हम जानते हैं कि मेरे मन को और मेरी वाणी को और मेरे शरीर को मलिन करती हैं उनको ही तो मुझे हटा देना है, वही तो मेरे संस्कारों को तोड़ने का सबसे आसान तरीका है। इस तरह से यदि हम अपने जीवन को संस्कारित करना चाहें तो कोई वजह नहीं है भैया, ना कोई इसमें हाथ पकड़ रहा है ना कोई रोक रहा है, हम जिस दिन संकल्प कर लेवे कि हमें ऐसा करना है उस दिन, और थोड़ा थोड़ा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता हूं कि हड़बड़ी में आकर के और जल्दी से, पहले क्रम होना चाहिए, पहले अभक्ष चीजों का त्याग, नहीं तो वे कहने आज हमारी रसी है शक्कर की, शक्कर तो खा नहीं रहे होटल को खा रहे तो क्या फायदा, शक्कर शक्कर तो भक्ष पदार्थ है वो तो अभक्ष खा रहे हैं, पहले क्रम होना चाहिए कि मैं पहले अभक्ष चीजों को छोड़ूं, खाने वाली चीजों को जो खाने योग्य हैं उनको बाद में छोड़ू, या कि दोनों साथ में छोड़ो, पर प्रायोरिटी किसको होनी चाहिए, जो मेरे मन को जितना गंदा करता है, जो मेरे अंदर राग द्वेष उत्पन्न करने वाली चीजें हैं, इष्ट अनिष्ट सब जानते हैं शरीर के लिए, इस तरह यदि हम अपने मन को बना लेवे। और आखिरी बात अगर देखा जाए, थोड़ा सा हमारे भीतर ज्ञान, थोड़ा सा हमारे भीतर बोध जागृत हो जाए, वो जागृत होगा ऐसे ही एकदम नहीं होगा, हमारे अपने अनुभव से आएगा कि देखो अपन ने ऐसा किया था तो कितना आनंद आया था, अपन ऐसे ही किया करेंगे, हमारे कहने से मत करना, हम बिल्कुल बार बार ये बात कहते हैं, हमारे कहने से तो सिर्फ एक दिशा ले लेना और खुद करके देखना हो फिर उसका मजा लेना हो, मजा आने लगे तो फिर शुरू करें, फिर आनंद आएगा उसमें, तब फिर स्वयं भी उससे और आनंद आएगा, नहीं तो मजबूरी में कि महाराज आए थे सो उन्हें एक ग्रास लेने तो सो एक ग्रास की जगह उन्हें हमारा महीना भर को छुड़वा दो तो सो महीना कैसे कटे, एक तीसवें दिन आवे तो सो हमने जानी हो महाराज ने जानी, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों लेना है तो प्रेम से लेना कि बहुत अच्छा किया इन्होंने मेरे जीवन में कल्याण कर दिया, आपके निमित्त से मेरा महीने भर का त्याग हो गया महाराज, आपका कितना उपकार मैं मानूं, वैसे तो मैं कर नहीं पाता था लेकिन आपने एक ग्रास लेने के लिए मेरे से ये कहलवा करके कि तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, वैसे तो मैं नहीं छोड़ पाता, आपका बहुत उपकार है कि आपने महीने भर की सौगंध दिला दी, अब तो मैं महीने भर क्या, अब तो अगर मुझे आनंद आने लगा तो मैं तो हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, मैं तो वर्षों से यही सोच रहा था, ऐसे परिणामों से छोड़ो भैया, अपने राग द्वेष को घटाने के लिए ये सारी चीजें अपने जीवन में लानी, इसी का नाम चारित्र है, और कोई बहुत बहुत बड़ी चीज इसी का नाम तपस्या है, इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम संयम है, अपन को लगता है कि ये सब बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं संयम तप और त्याग, ऐसा नहीं है, अपने जीवन को अनुशासित करना और अपने राग द्वेष को संस्कारों को तोड़ना इसी का नाम, और अपने भीतर धीरे धीरे बोध जागृत हो अपने आप जागृत होने लगता है, अपने आप ज्ञान होने लगता है। एक उदाहरण जो कि सबको मालूम है, देशभूषण कुलभूषण महाराज अपने अपने जीवन में बचपन में जो है वो माता पिता की आज्ञा से पढ़ने के लिए गए थे 12 बरस के लिए, और वहां से लौट करके आए थे, तब लौट करके रथ में और बैठ के आ रहे हैं और सारी शोभा देखते हुए आ रहे हैं, और अपने ही महल की छत पर उनकी दृष्टि पड़ी तो वहां पर खड़ी हुई बेटी को देख करके उन्होंने कहा कि मैं इससे विवाह करूं। दोनों भाइयों के मन में एक साथ आया, किसके मन में नहीं आता, आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, और आ गया मन में कि मैं विवाह करूं, और लेकिन इसके बाद वाला मामला गड़बड़ हो गया, यहां तक तो ठीक था विवाह का मन में आया, लेकिन इसके बाद यदि मेरे इस विवाह में मेरा भाई भी अगर बाधक बनेगा तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूं, और तलवार निकल आई विचारों विचारों में कि देखें अगर ये मैंने पहले देखा है मैं इसे प्राप्त करूंगा, मेरे भीतर हमारे भीतर के राग द्वेष के संस्कार कहां तक बढ़ते चले जाते हैं, यहां तक तो ठीक था, इसके बाद
अब जो मेरे उस पूर्ति में बाधक बनेगा मैं उसे नष्ट कर दूंगा। बस इतना ही बोध हमारे भीतर जागृत हो जाए कि मुझे अपने राग द्वेष के संस्कारों को इतना अधिक नहीं बढ़ाना है जिससे कि दूसरे का और मेरा दोनों का कल्याण हो जाए। इतनी लिमिट, इतना बोध जागृत हो जावे अगर तो हाथ रुक जाएगा। और दोनों के मन में जैसे ही ऐसा विचार आया और विचार कर ही रहे थे और उतने में जो है माँ के साथ वो बिटिया आकर के, और माँ कह रही है कि देख तो दोनों भैया लौट के आ गए, कितने वर्ष के बाद लौटे, तू आरती तो उतार। बस जैसे ही ऐसा सुना कि जिसके लिए कह रहे थे कि ये तो मैं ब्याह करूंगा और जिस पे से मैं अपने मन को गंदा कर रहा था, विकारी कर रहा था, वो तो मेरी बहन है। इतनी सी बात बताइए, इतना सा संबंध याद आ जाने से, और ऐसे ही अगर अपने भीतर वो संबंध याद आ जाए कि मेरा अपना आपसे क्या संबंध है, मेरी अपने स्वभाव से संबंध है या कि मलिनताओं से संबंध है, इतना अगर मेरे भीतर आ जाए। दोनों कहते हैं कि सब कुछ त्याग करके और तपस्या में लीन हो गए थे, देशभूषण कुलभूषण केवल ज्ञान को प्राप्त किया। तो भैया इतना सा हमारे भीतर अपने संस्कारों को तोड़ने के लिए, संस्कार तो थे, आ गया था मन में, लेकिन कितनी सी बात से संस्कार टूट गए, उतना सा संबंध की पवित्रता जान करके। और ऐसे ही अगर अपने आत्मा की पवित्रता का उस समय बोध जागृत हो जाए कि क्या कर रहे हैं, उन्हीं मलिनताओं में फिर से जा रहा हूं, ऐसा विचार आ जाए तो ऐसा नहीं है कि हम अपने को ना संभाल पाए। हमारे अंदर अनंत शक्ति है पर वो हमारे ही बांधे गए कर्मों की वजह से तिरोहित हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है, हम जागृत करेंगे और उसे जागृत करके अपने जीवन को अच्छा बनाएंगे, इसी भावना के साथ कि हमारे अंदर के संस्कार घटें भैया और हमारा मन निर्मल बना रहे। हमें ऐसे संपर्क जब भी मिले तो अपनी कषायों को मंद करें, इसी भावना के साथ बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर।
हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सत्याधिक दर्शन करने वाला
तमनाश्रितो ज्ञानी शिवकारी।
के ज्ञान से सूचे तो खा लो।